ओम शांति। यहूदियों में एक संत, एक फकीर कभी हुआ था जिसका नाम हसीद था। अपने ही युग में एक क्रांतिकारी, यहूदियों की जो तथाकथित धारणाएं थी उन सब में जैसे कि विद्रोही, ऐसा ये हसीद। अपने जीवन काल में कभी उसने कोई एक किताब लिखी थी जिसमें उसके ही सिद्धांत थे। सारा समाज तो उसके विरोधी था, विरोध में था। ऐसे ही यहूदियों के धार्मिक गुरु के पास एक दिन वो अपने शिष्य को अपनी ही किताब लेकर भेजता है और उससे कहता है कि जाकर देखो वो गुरु क्या कहते हैं। परंतु एक बात याद रखना कि जब ये किताब उस धर्म गुरु के पास, उस यहूदी गुरु के पास ले जाओगे जो कि बहुत बड़ा विरोधी है, तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, चाहे वो कुछ भी करे। अपने गुरु के कहे अनुसार हसीद का वो शिष्य पहुंचता है उस धर्म गुरु के पास और उस धर्म गुरु को वो किताब देता है। किताब देखते ही वो धर्म गुरु इतना क्रोधित हो जाता है, कि किताब को उठाता है और फेंक देता है एक तरफ। उसका ऐसा गुस्सा देखकर उस शिष्य को लगता है कि मैं कुछ कहूं, कुछ बोलूं, कुछ तो कहना चाहिए, इतना बड़ा जैसे अपमान कर दिया। फिर भी उसे अपने गुरु के वाक्य याद आते हैं कि तुम्हें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, साक्षी होकर केवल देखना है, कहना कुछ भी नहीं है। उतने में उस धर्म गुरु की पत्नी कहती है, इतना क्रोधित क्यों होती हो, किताब को फेंकने की क्या आवश्यकता है, किताब पर क्यों इतना गुस्सा, हमारी जो अलमारी है उसमें इतनी सारी किताबें तो पड़ी हुई है, उसमें ये भी एक किताब रह जाएगी। उस शिष्य को लगता है कि कुछ कहूं, उसको अंदर ही लगता है ये जैसे कि मित्र है। परंतु फिर से अपने गुरु के वाक्य याद आते हैं कि तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, साक्षी होकर देखना है। और अंत में जाते समय वो कहता है, जाने जब लगता है तो वो दोनों ही पति पत्नी उससे पूछते हैं कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तो वो कहता है मेरे गुरु का आदेश है, कुछ भी नहीं कहना है, केवल जो होता है, जो हुआ है उसे साक्षी होकर देखना है और उन्हें जाकर बताना है। वापस अपने गुरु के पास आता है, उसके गुरु उसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। पूछता है कि जब उस व्यक्ति ने क्रोध किया तो तुमने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, या तुम्हारी उन दोनों के विषय में अभी भी वही धारणा है जो वहां जब थे तब थी। वहां जब वो था तब तो ये सोच रहा था कि ये व्यक्ति कितना गुस्सा कर रहा है, जैसे कि ये शत्रु है और उसकी पत्नी कौन है, मित्र है, क्योंकि उसने मीठे वचन बोले। परंतु कहा क्या था कि ये किताब, इतनी किताबें तो है, उसमें ये भी किताब रह जाएगी। गुरु उसको पूछता है, क्योंकि तुमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, तुम्हारी तब की समझ और अब की जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है। वो कहता है हां, तब मैं सोच रहा था कि वो जो यहूदी धर्म गुरु है वो मित्र है और वो जो पत्नी है उसकी पत्नी वो मित्र है, परंतु अब मैं ऐसा नहीं सोचता, अब मैं ये सोचता हूं कि वो जो धर्म गुरु था वो तो क्रोध में था, शायद थोड़े समय के बाद उसका ये क्रोध शांत हो जाए और हो सकता है संभवतः वो किताब उठा ले, पश्चाताप करे और थोड़ा पढ़े भी। क्योंकि मैं साक्षी था इसके लिए मैं ये अब समझ पा रहा हूं। और जो उसकी पत्नी थी जिसने ये कहा था कि इतनी सारी किताबें तो पढ़ी हुई है उसमें ये भी किताब रह जाएगी, उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो किताब को कभी पढ़े भी। ये घटना हमने इसलिए बताई, डायरेक्ट संबंध तो नहीं है परंतु कोई भी चीज को जब साक्षी होकर देखा जाए और गहराई से समझा जाए तो हमारी समझ में एक अद्भुत सा बदलाव आता है। जो कल बाबा ने तीन पक्षियों की चर्चा की थी, जो कि डाली वाले जो पक्षी है, पहला पक्षी कौन सा, पहला पक्षी कौन सा जो डाली वाला है जो कि चतुर है, दूसरा पक्षी है कमजोर, तीसरा पक्षी है भोला, भोला पक्षी क्योंकि कुछ भी जानता नहीं है। तीन व्यक्तित्व की यहां चर्चा है, मनुष्य के ब्राह्मणों के तीन व्यक्तित्व की जो थर्ड कैटेगरी है, तीसरी श्रेणी है, यवन आत्माओं की श्रेणी है जो शायद कुछ भी जानती नहीं है। उन्हें ये ही पता नहीं है कि वो दूर है, उन्हें ये भी अनुभव नहीं है कि वो बंधन में है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन बंधनों से छूटना भी है। जिस डाली को वो पकड़े हुए है उनसे छूटना है, उड़ना है। इन्हें भी संभवतः जब पता चलेगा उड़ना आरंभ करेगी। दूसरे जो है कमजोर है, उड़ना चाहते हैं परंतु युक्ति नहीं पता, विधि नहीं पता, मार्ग नहीं पता। जब मार्ग पता चल जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तब उड़ना चालू कर देंगे। इन्हें भी माफ किया जा सकता है। परंतु जो पहले है और जो अधिकांश है उनका क्या? ये वो चतुर पक्षी है उस स्त्री की तरह, उसकी संभावना ही नहीं है क्योंकि किताबें पढ़ी है वहां पर और वो कभी पढ़ने वाली है नहीं, उसे शायद ही कि कभी ज्ञान होगा। वैसे ये जो पक्षी है जो जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम बंधन में हैं और खुद ही पकड़े हुए हैं डाली को, परंतु ये भी इच्छा है कि बाप का साथ मिले। दो दो इच्छाएं साथ साथ है। ये भी जानते हैं कि दोनों इच्छा एक साथ पूर्ण नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ा सा उड़ते हैं फिर बैठते हैं। ज्ञान संपूर्ण है, विधि भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि विधि पता नहीं है उड़ने की। और ये तो अज्ञानता है ही नहीं कि उड़ना भी है, उन्हें पता है क्योंकि दूर से देखते हैं, नैन मुलाकात करते हैं, खुश होते हैं उन पक्षियों को देखते हैं जो कि बाप से मिलन मना रही है, इसका भी उन्हें ज्ञान है। परंतु बंधनों से प्रेम भी उतना ही, डाली को पकड़े हुए हैं, कौन से पैरों से पकड़े हुए हैं? अपनी बुद्धि के पैर से। किन डालियों को पकड़े हुए हैं? पांच डालियों का वर्णन बाबा ने कल किया है। कौन सी वो डालियां है जिनको ये आत्मा है जो कि बहुत ही बुद्धिमान, दिव्य बुद्धिमान नहीं आज के वरदान वाली, तथा कथित बुद्धिमान, चतुर, बंधनों को जानने वाली, डालियों को समझने वाली, जिन्हें ये भी पता है कि छूटना है और जानते भी है उड़ना कैसे, पंख है, सुंदर है, सुंदर इसलिए क्योंकि बाप के बने हैं। कौन सी वो डालियां है, पांच डालियों का बाबा ने वर्णन किया है। सबसे पहली डाली तो है, यह ऐसी डाली है कि सबसे कठिन डाली तो यही है, बाकी डालियां तो आसान है जिससे छूटा जा सकता है, परंतु ये डाली स्वनिर्मित है, स्वयं की है, स्वयं के ही स्वभाव और संस्कार की यह डाली है पहली। दूसरी डाली दूसरों के स्वभाव और संस्कार को देखना और वर्णन करना, अर्थात प्रदर्शन की यह डाली है। प्रदर्शन उस डाली में समाया हुआ है और हर ब्राह्मण आत्मा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय इस डाली को पकड़ लेती ही है। न मालूम इस डाली में क्या सुख है, परंतु है। तीसरी, पुरुषार्थ में आधार, निराधार नहीं, आधार। किन किन का आधार, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चौथी डाली, चौथी डाली, चौथी डाली वो डालियां नहीं है व्यक्ति और वस्तु में लगाओ, ये भी एक शक्तिशाली डाली है। और अंतिम डाली, शक्ति और गुणों की कमी, पांच डालियां, तीन पंछी, पहले चतुर, दूसरे कमजोर, कमजोर है, शक्ति नहीं है, युक्ति का भी पता नहीं है, मार्ग नहीं पता, पंख है, उड़ नहीं सकते, तीसरे बहुत ही भोले हैं, इस बात से भी अनभिज्ञ है कि उड़ना भी है, शायद डालियों को डाली ही नहीं समझा है। अपनी परतंत्रता को जैसे स्वतंत्रता समझ बैठे है, परतंत्रता को जैसे समझा है कि ये स्वतंत्रता है, अपनी लोहे की जंजीरों को जैसे सजा कर रखा है, समझा है ये जंजीरें नहीं है, तो बाबा आज कौन सा वृक्ष देख रहे हैं? ये कौन सा वृक्ष है, वृक्ष कौन सा है, कैसा है नहीं, कौन सा है? ब्राह्मण परिवार का ये वृक्ष बाप का वृक्ष है। एक जगह कहा ना बाबा ने, ये वृक्ष कौन सा है, बाप का वृक्ष है, ब्राह्मण परिवार का वृक्ष है, जिस वृक्ष की कुछ खूबियां है, ये वृक्ष अति सुंदर है। क्यों सुंदर है, क्योंकि एक एक पक्षी इस वृक्ष का जो है वो बाप का बना है। किसके बने, क्यों बने, ये भी स्मरण रहा तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। पार्टियों में कहा ना, कमाई होती रहेगी, तो ये वृक्ष अर्थ सहित है, ये वृक्ष अलौकिक है, ये वृक्ष अनेक डालियों वाला है, इसमें कोई डाली छोटी है तो कोई बड़ी, कोई पतली है तो कोई मोटी, अनेक डालियों वाला ये वृक्ष, रंग बिरंगी पंछियों वाला ये वृक्ष, सुंदर सुंदर पंछियों वाला ये वृक्ष है। और बाबा ने एक सुंदर सा समान दिया है, हम सब कौन आत्माएं हैं, रमणीक मूर्त, अलौकिक रमणीक, रूहानी रमणीक मूर्त आत्माएं हैं हम, साथी है सदा के और सहयोगी है, वो स्वयं भी साथी है और वो स्वयं भी सहयोगी है। और आज कौन सी बातें बताने आया है, वतन की रमणीक बातें। क्यों, रमणीक बातों की क्या आवश्यकता है, बाप भी नए बातें भी नए, आज की साकार मुरली में वाक्य है एक, यह है नई बात, बाप भी नया तो बातें भी नई। क्यों नई बातें बताने आया है? पुराना सुन सुनकर सुन सुनकर सुन सुनकर सुन हो गए हैं, पुराने से उब जाती है आत्माएं, इसके लिए बाबा हर दिन नई नई बातें बताता है। तो बाबा ने ऐसा अर्थ सहित वृक्ष देखा और उस वृक्ष में इतने सारे पंछी देखे जो कि चिल्ला रहे थे, क्या अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा बाबा, उड़ाओ उड़ाओ। देखकर तो लगता है जैसे कि सहानुभूति का भाव, रहम दिल का भाव उमड़ आता है कि इन्हें वास्तव में मदद चाहिए, परंतु शायद चिल्ला तो रहे हैं परंतु मदद चाहिए नहीं, यदि दी जाए तो भी लेंगे नहीं, इसके लिए तो चतुर है। कहते हैं केवल कि हमें छुड़ाओ, प्रश्न बहुत सारे हैं, पुरुषार्थ कैसे करें, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बनाएं, सबसे आगे कैसे जाए, बाबा के प्यार का अनुभव कैसा हो, परंतु शायद प्रश्न पूछने वाले केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा भी कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा आओ, मीठा बुलावा दे रहे हैं। ये तो कभी इसी क्लास में सुनाया था उस क्रांतिकारी, उस स्वतंत्रता सेनानी की कहानी, जो कि एक बार पहाड़ियों के बीच किसी सराय में रुका और उस सराय में एक पंछी था जो कि पिंजड़े में बंद था और जोर जोर से हर दिन दिन रात चिल्लाता था आजादी आजादी और आजादी, और उसकी गूंज उन पहाड़ियों में प्रतिध्वनित होती थी, उसकी वो गूंज, उसका वो एको चारों ओर गूंजता था। और क्योंकि यह व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी था और उसे एक रात उसी सराय में रुकना था, जब उसने देखा, उसके जीवन में तो उसने कई सारी आत्माओं को देखा था कि जो कि बंधन में थे और उन्हें छुड़ाना उसका परम कर्तव्य उसने माना था, और जब देखा कि आज एक पंछी एक कबूतर उस बंधन में है, उस पिंजड़े में है, और ऐसी आर्त पुकार उस पंछी की जो कि वातावरण में चहुओर गूंज रही थी, उसके हृदय में ये संकल्प आया कि कुछ भी हो जाए इस पंछी को मैं छुड़ा कर रहूंगा। आधी रात जबकि उस सराय का मालिक सो जाता है, उस पंछी के पास जाता है, पंछी का जो पिंजरा होता है उसका दरवाजा खोलता है और कहता है पंछी को कि आ जाओ और उड़ो। वो पंछी फिर भी चिल्लाते रहता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता आजादी आजादी, वो कहता है कि उड़ो, वो और जोर से पकड़ता है उस डंडी को पिंजड़े के अंदर की, वो कहता है कुछ भी हो जाओ मैं तुम्हें छुड़ा के रहूंगा, अपना हाथ अंदर डालता है, पंछी उसके हाथ पे अपनी चोच मारता है और पूरा हाथ लहूलुहान हो जाता है और चोच मारते हुए भी कहता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता सेनानी, ये फ्रीडम फाइटर सोचता है इसको मैं छुड़ा कर ही रहूंगा, और जोर से कबूतर को पकड़ता है, पिंजरे से बाहर निकालता है और आकाश में उसको छोड़ देता है और चैन की सांस देता है कि मैंने एक बहुत महान कार्य कर दिया, और फिर जाकर बिस्तर पर सो जाता है आराम से। सुबह होती है और फिर वही आवाज स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। सोचता है किसी पर्वत पर वो पंछी बैठा है, सोचता है किसी झाड़ की टाली पर वो पंछी बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है, परंतु देखता का क्या है, पिंजड़ा खुला हुआ है और पंछी पिंजड़े के अंदर। कैसी विडंबना है और कैसा प्यार है इस पिंजड़े से पता नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है पंछी ये सोच रहा होगा यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिलता है, सुरक्षा है, कहाँ उड़े उस आकाश में जहां पर सुरक्षा नहीं है, क्यों उड़े उस आकाश में, और हो सकता है इतने लंबे समय तक अपने अपने पंखों को का प्रयोग ही नहीं किया है तो भूल गया है कैसे उड़े अब, और कितना यहां ना तो कोई जॉब करना है, रोजी रोटी कमाना है, ना कोई आक्रमण करने वाला है। हर व्यक्ति अपने ही बंधनों में इस तरह बंधा हुआ है, ऐसी ही तालियों को पकड़े हुए है कि उसे पता ही नहीं इस मानसिक कारागृह से कैसे मुक्त हो। जिसे बाबा कह रहे संस्कार और स्वभाव, जिसे बाबा कह रहे शक्ति और गुणों की कमी, जिसे बाबा कह रहे पर दर्शन। क्यों प्यार है इतना बंधनों से, है ना, तो ही तो छूट नहीं रहे। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, सोने की जैसे कि आभूषण जैसे लगते हैं। इसके पहले भी सुनाया था, फिर सुना रहा हूं। 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति, 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस में पेरिस, पेरिस में एक बहुत बड़ा किला है जहां पर सभी क्रांतिकारी, लगभग 5000 क्रांतिकारियों को कैद करके रख दिया, और इसलिए कैद करके रख दिया क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था उस शासन शासक का और शासन का। उन्हें ताउम्र उसी कारागार में रहने की सजा हो गई, वहां से छूटना नहीं है, और उनके हाथों में बेड़ियां लगाई गई, उनके पैरों में बेड़ियां लगाई गई, और वो जो ताले थे उनकी चाबियां थी, क्योंकि सारी उम्र वैसे ही रहने थे, इतने सारे कैदी 5000 कहां रखेंगे इतनी चाबियां, तो कुएं में फेंक दी गई। कोई कैदी 40 साल से वहां रह रहा है, कोई 50 साल से वहां रह रहा है, कोई 60 साल से वहां रह रहा है, कोई तो बिल्कुल छोटा बच्चा था 10 साल का तब से रह रहा है और अभी 60 साल का हो गया। इतने सालों से वो कैदी उस अंधेरी कोठरी में रह रहे हैं, इतना बड़ा अब भी है वो फ्रांस में, पेरिस में, बैस्टील, द फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टील जिसको कहते हैं। जब विद्रोह हुआ और क्रांतिकारी आ गए सारे के सारा 14 जुलाई, और क्रांतिकारियों ने सारे किले को घेर लिया और अंदर गए, उनको लगा है ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे जो साथी है उन्हें हमें छुड़ाना ही है, और जाकर चाबियां तो थी नहीं परंतु सारे बंधन तोड़े, सारे ताले तो तोड़े, सलाखें तोड़ी, उनकी जो चेन बेड़ियां तोड़ी, और सबको पकड़ पकड़ के घसीट कर बाहर निकाला दिन के उजाले में। सारे के सारे कैदी दुखी हो गए। आधी रात जब हुई सब कैदी अपने ही वापस अपने अपने जहां वो थे वहां भागे, कहने लगे हम अब कहां जाए, हमें अब कौन पहचानता है, ये सूरज की रोशनी हम देख नहीं सकते, इतने सालों तक हमने अंधकार में बिताया, कैसे हम बाहर गुजर, हमको खिलाएगा कौन, कौन हमको नौकरी देगा, वो हमको पता नहीं हमारी बीबी बच्चे कहां चले गए, हमें तो बस उन्हीं बेड़ियों में वापस जाना है। आप क्रांतिकारी हो, आपने हमें छुड़ाया, बहुत धन्यवाद, पर हमें वहीं वापस पहुंचा दो, और उन बेड़ियों के बगैर तो हम जी ही नहीं सकते, इतने सालों से उन बेड़ियों की हमको आदत पड़ गई है। कैसा कैसी ये विडंबना और कैसा है ये अद्भुत स्वभाव है मनुष्य का, कि बंधनों में जब रहता है तो वही अच्छे लगते हैं, छूटना नहीं चाहता। तो बाबा आज बात कर रहे हैं इन तीन पक्षियों की, जो कि पकड़ के है और जोर से पकड़ के है, और युक्ति बाबा ने बताई कौन सी, छोड़ो तो छूटो, परंतु कैसे छोड़ो वो तो बताया ही नहीं, कि बता दिया सच्ची सीता नस नस में राम की स्मृति का आवाज वो तो है, परंतु फिर भी छोड़ो तो छूटो, ये व्यक्ति आधारित है। दूसरा कवि बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया है, छोड़ो तो छूटे, ये वस्तु आधारित है। पकड़ा तुमने है, उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का, शुरू से छोड़ दिया, शुरू से छोड़ा, रुके नहीं किसी के लिए, दूसरे छोड़े तो मैं छोड़ू, बाप छुड़ाए तो मैं छोड़ू। बाप क्यों छुड़ाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बाप तो निमित्त बन, करावन हार बन, तुम्हें निमित्त बनाते हैं। बाप थोड़ी ना, बाप को थोड़ी पाना है। एक तो बाप, दूसरा साथी, संबंधी, परिस्थितियां, विघ्न, विघ्न डालने वाले, स्व के स्वभाव संस्कार, दूसरों के स्वभाव, दूसरों का संस्कार परिवर्तन, इन सब के लिए रुकना नहीं है। यहां तक कि टकराव के लिए भी नहीं रुकना है। बाबा ने कहा टकराव होता है उसमें भी वो बदले, वो छोड़े तो मैं छूटू। मुझे ओटे सो अर्जुन, अर्जुन की परिभाषा दी है समान, समीप और कंबाइंड। अर्जुन की परिभाषा दी है बाबा ने समान, समीप और कंबाइंड। जो ओटे सो अर्जुन, जो प्रथम करेगा विजय उसकी है। मुझे छूटना है अपने स्वभाव संस्कार से, साथी छूटे या न छूटे, संबंधी छूटे या न छूटे, परिस्थितियां बदले या न बदले, विघ्न डालने वाले बदले या न बदले, बाबा ने शुरू से छोड़ा। ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी बदल जाए तो मैं बदलू, मेरे बच्चे बदल जाए तो मैं बदलू, समाज का ये विरोध कम हो जाए तो मैं बदलू, तो मैं छोड़ू, परवाह नहीं करनी। आज भी कहा ना बाबा ने, साकार मुरली, परवाह नहीं करनी। प्राप्ति जबरदस्त है, प्राप्ति का पता नहीं है तब आग लगती है, आज कहा है। तो अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आया तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। ये है विधि किसकी, छोड़ने की। कौन सी तार आई और कौन सी रेल, कौन सी तार कौन सी रेल, कौन सी ये पटरी है, याद की पटरी। छोड़ने की बाबा बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और कहता है कि मुझे छुड़ाओ इस संसार के बंधनों से, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब दुख देते हैं, क्या करूं मैं, मित्र संबंधी भी दुख देते हैं, पूरा समाज दुख देता है, एक भी भरोसे लायक नहीं है, सारा संसार ही दुख देने वाला है, मुझे इन सभी बंधनों से छुड़ाओ, मैं तो बस छूटना चाहता हूं। वो साधु उसको जंगल में लेके जाता है और वो साधु एक झाड़ को पकड़ता है और जोर जोर से खुद ही चिल्लाता है, साधु खुद पकड़ता है झाड़ को और चिल्लाता है छुड़ाओ छुड़ाओ और छुड़ाओ। वो व्यक्ति कहता है तुमने खुद ही तो पकड़ा है और खुद ही कहते हो छुड़ाओ छुड़ाओ। साधु कहता है तुमने भी तो खुद पकड़ा है, छोड़ो तो छूट जाए। पकड़ा किसने, तुमने ही पकड़ा है ना। प्रभु प्रेम की जैसे ये तार है, जिस जिसको ये तार मिलेगी वो झूठी बादशाही नहीं ले सकता, ये संसार झूठी बादशाही है। गोबर कुछ दिन पहले था, गोबर की दुनिया, यहां बास है गोबर की, जिसे वह सुगंध आ गई उसे उसके लिए ये दुर्गंध है, परंतु वह टेस्ट, वह आजादी की टेस्ट जिस पंछी को आ गई, उन मुक्त गगन में जो उड़ा है, आजादी को पाया है जिसने, उसके लिए ये फिर पता चलेगा बंधन है। परमात्मा प्रेम की तार ये पटरी है, कौन सी, हुआ रेल का राही, वैराग की, परमात्मा प्रेम की ये ट्रेन, ये तीन चीजें विधि है। छोड़ो तो छूटो, वो परमात्मा प्रेम की तार आ जाए, वो परमात्मा संदेश आ जाए, वो डिवाइन कॉल आ जाए और फिर लगे कि इस दुनिया को अब छोड़ना है, उस दुनिया में जाना है। थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, कट द ब्रिजेस। जिस पुल पर होकर इस यहां आए हो इस यज्ञ में, अब उस पुल को काट दो ताकि वहां वापस जाने का कोई मार्ग ना हो। कट द ब्रिजेस। जिस सीढ़ी पर चढ़कर यहां पहुंचे हो, थ्रो द लैडर, उस सीढ़ी को फेंक दो ताकि फिर से वापस नीचे उतरने का कोई संकल्प ना आए। ड्राउन द बोट। जिस जहाज पर उस दुनिया से इस दुनिया में आए हो, अब आने के बाद क्या करो, उस नाव को डुबो दो। ड्राउन द बोट, कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर। ये नियम है तीन। हुआ रेल का राही, पवित्रता की ये रेल है जिस पर बैठकर और वैराग किए जैसे डगर है। परमात्मा का ये तार है संदेश जिसमें आत्मा इन बंधनों को छोड़कर निकल सकती है बाहर। तो परमात्मा प्रेम को बढ़ाना होगा और वैराग को बढ़ाना होगा और पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। तो अपवित्रता के प्रति स्वत ही वैराग होगा, स्वत ही घृणा उत्पन्न होगी। तो ये पक्षी तो वहां थे, कहां, झाड़ पर। क्या कर रहे थे वहां बैठकर? देख रहे थे उनको जो कि मिलन मना रहे हैं, नयन मुलाकात कर रहे थे। चाहते तो थे हम भी जाए, परंतु जा नहीं रहे थे। थोड़े देर के लिए उठते थे, फिर बैठते थे। चिल्लाते जरूर थे, परंतु आसक्ति बहुत थी, लगाव बहुत था। अब दूसरे प्रकार के पक्षी हैं, वो भी तीन हैं। वो कौन कौन से? ये उड़ने वाले पक्षी हैं। और उन तीन में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? एक तो कंधे वाले। कंधे में भी दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक दाया कंधा, बाया कंधा। नहीं नहीं कंधा अर्थात कंधे पर बैठने वाले, अर्थात भगवान के कर्तव्य में सहयोगी। कभी सहयोगी वाले भी है तो उसमें वियोगी वाले भी है। कभी कभी सहयोगी की बजाय क्या हो जाते हैं, ये कंधा छोड़कर उस झाड़ पर चले जाकर उस डाली को पकड़ लेते हैं तो वियोगी। कभी सहयोग देते हैं तो कभी वियोगी। तो एक तो कंधे वाले, दूसरे उंगली, कंधे में भी नाचने वाले, दूसरे उंगली वाले। उंगली वाले को अर्थात उंगली कौन सी? श्रीमत। उसमें क्या कर रहे? नाच रहे, अर्थात श्रीमत। याद प्यार में कहा है श्रेष्ठ कर्म श्रीमत अनुसार, श्रेष्ठ कर्म बोल संकल्प करने वाले। तो उंगली। और तीसरे आसपास चक्कर लगाने वाले, घूमने वाले, फिरने वाले, चलने वाले, ये कौन से हैं? गेगे वाले, अर्थात सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, पोस्टपोन करने वाले, टाल मटोल करने वाले, ये कहने वाले कि कल से करेंगे। ये जो पुरुषार्थ है, अच्छा पुरुषार्थ, पावरफुल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, कब करेंगे? कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बाद से करेंगे। बाबा को एक बार मिल लेते हैं अभी 16 तारीख को, फिर बाबा जो कहते हैं उसके बाद चालू करेंगे पावरफुल। 13 दिन रह गए हैं बस, काउंटडाउन स्टार्ट। तो ये तीन पक्षी किधर है? इधर। वो तीन उधर। उधर वाले देख रहे हैं कि इधर वाले, उधर वाले जो है पेड़ वाले, वो दो चीजों का अनुभव नहीं कर पा रहे। कौन सी दो चीजें? समीप मिलन का अनुभव और दूसरा विश्व परिक्रमा, अर्थात बेहद की सेवा का अनुभव वो नहीं कर सकते जो दूर है, जो किसी ना किसी बंधनों में फंसे हुए हैं। फिर और एक कैटेगरी, आना और जाना। बिजली आती है और जाती है, उसके लिए भी बाबा ने कहा थोड़ी बात, एक तो मैं करूं और दूसरा दूसरे करे, मैं स्वयं छूटू दूसरा छूटे। तो चिंतन का विषय ये है। ये तो रमणीक बातें बाबा ने सुनाई, श्रृंगार किया है शब्दों से और अलंकार पूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, परंतु गूढ़ अर्थ क्या है? अर्थ है डालियां कौन कौन सी और किस विधि से छूटना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे विधि की, किस विधि से छूटा जा सकता है। एक पंछी है जो डालियों को पकड़े बैठा है। डालियां और भी बहुत है, केवल पांच ही नहीं, और कौन कौन सी डालियां हो सकती है? साधन, आज के वर्तमान समय कौन सा साधन? साधन एक ऐसा चीज हो गई है कि जिसमें बाबा ने कहा ना, आधार बन गया है, जैसे पुरुषार्थ का जैसे आधार बन गया है। वास्तव में कोई भी बाहर की वस्तु पुरुषार्थ का आधार नहीं हो सकती। आत्मा के बाहर की कोई भी वस्तु यदि पुरुषार्थ का आधार है तो गिरना होगा। स्वामी रामातीर्थ ने कभी अपने विदेश के प्रवचनों में कहा है, उदाहरण दिया है आर्किमिडीज का, यूनान का जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उस आर्किमिडीज ने कहा है कि मैं इस धरती पर ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं कि जो स्थिर हो, स्टेबल हो, पर आज तक मिला नहीं, क्योंकि धरती का कोई भी स्थान स्थिर नहीं है। ढूंढता ही रहा अपने जीवन भर कि धरती का ऐसा कोई स्थान मिल जाए, यदि मैं वो स्थान ढूंढ लूं तो सारी दुनिया मेरे पीछे हो जाएगी। परंतु धरती पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जो स्थिर है। धरती सदैव हर स्थान एक चलायमान अवस्था में है, कोई भी स्थान स्थिर नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने वहां कहा है कि हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्थान संसार में स्थिर है और वो है आत्मा। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा केंद्रित नहीं है और अपनी आत्मा में स्थित नहीं है, अपनी ऊंची अवस्था में स्थित नहीं है, वो स्थिर ही नहीं हो सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ का आधार कोई भी बाहर की वस्तु नहीं हो सकती। तो एक आधार हुआ साधन, पांच तो बाबा ने बताए साधन, और क्या? सुविधा, साधन, फैसिलिटीज, सल्वेशन, अलग अलग नाम से बाबा ये कहते हैं। फैशन, वाइट में भी फैशन, बैच में भी फैशन, वो भी एक सूक्ष्म जैसे आधार बन जाता है। व्यक्ति कहा, व्यक्ति का बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। लौकिक परिवार, व्यक्ति यहां तो पहुंच गया है, ब्राह्मण तो बन गया है, संसार को तो छोड़ दिया है, सेंटर पर तो आ गया, मधुबन में तो आ गए, सेवा केंद्र पर पहुंच गए मन से या फिर स्थूल भी, परंतु वो आसक्ति अब तक नहीं गई है लौकिक। वहां की दाल रोटी अभी भी बहुत अच्छी लगती है, वो खाना अभी भी खींचता है। पर याद रखना, जिन्हें अब भी वो दाल रोटी खींचती, एक दिन वही दाल रोटी वहीं पर पहुंचा देगी जहां से आए थे। और एक धन, वेल्थ। बाइबल में लिखा, यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, गॉड एंड मैमन। आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, भगवान और धन एक साथ। अगर एक से ज्यादा प्यार है तो दूसरों को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे से ज्यादा प्यार है तो पहले को छोड़ना पड़ेगा। नाम सेवा का है, परंतु दौड़ धन की है, वो भी कहीं ना कहीं गिराएगा, वो भी एक डाली है जिसे पकड़े हुए है। और एक डाली है स्वयं की ही विशेषताओं का अहंकार, स्वयं की सेवा का अहंकार। अपने अहंकार की दौड़ को सेवा क्यों नाम देना। ये भी एक सूक्ष्म और बहुत मीठी सी डाली है। और एक डाली है स्वाद, स्वाद, स्वाद में फंसना, सूक्ष्म डाली है ये भी। लक्ष्य कर्मेंद्रिय चीत बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे अव्यक्त महावाक्य है। जो स्वाद में फंसे हैं कैसे अशरीरीपन का अनुभव कर सकते, कैसी उन परम उच्च अवस्थाओं का अनुभव कर सकते, उन अव्यक्त स्थितियों का अनुभव कैसे कर सकते, उन आवास से परे स्थितियों का कैसे अनुभव कर सकते हैं जो कि भोग और विलासिता का जीवन बीता रहे हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, जबकि ये डगर वैराग की है। जहां राग नहीं वह डगर है। ये इन डालियों से ऊपर कैसे मुक्त हो, इन डालियों से माया विघ्न परिस्थितियां आती ही रहेगी। बाबा ने कहा एक डाली को काटो तो दूसरी तैयार हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति झाड़ियों के झुंड से गुजरता है तो उसके कपड़े वहां अटक जाते हैं कांटों में, वो छुड़ाने की कोशिश करता है, छुड़ता है तो देखता है दूसरी तरफ से फंस गए। एक बंधन गया दूसरा बंधन, दूसरा गया तीसरा। कौन सी विधि है? सबसे पहला तो आज ही की मुरली में उसका उत्तर है, साकार मुरली में। यहां जबरदस्त प्राप्ति है, प्राप्तियों का चिंतन और डालियों के होने वाले नुकसान का चिंतन। जिन डालियों को हमने पकड़ा है, सोच के रखा है कि पुरुषार्थ में यह व्यक्ति मेरा आधार है, पुरुषार्थ में यह व्यक्ति मेरा साथी है, सपोर्ट है, निस्संग हो जाना है पुरुषार्थ में, तो किसी का आधार लिया तो फंसना, फिर दूर से देखना पड़ेगा जो दूसरे मिलन मना रहे हैं उनको। सबसे पहला है प्राप्तियों का चिंतन, दूसरा है नुकसान क्या क्या है इन डालियों से, उसकी लिस्ट स्वयं स्वयं निकालना, कहां कहां धोखा दिया है इन डालियों ने, व्यक्तियों ने, वस्तुओं ने, साधनों ने, उनका चिंतन, तब कहीं जाकर डालियों से ऊपर उठ सकेंगे। यह संकल्प उत्पन्न होगा कि उड़ना है। उसके बाद है सत्य, सत्य का ज्ञान। वास्तव में जीवन में जब तक हमें सत्य प्राप्त नहीं होता है, हम छूट नहीं सकते। फ्रीडम के लिए सत्य की आवश्यकता है, ट्रुथ की। जितना सत्य हम जानते हैं, शायद वह सत्य नहीं केवल सूचनाएं हैं, सत्य नहीं, सत्य की प्यास हमारे अंदर निरंतर हो कि जीवन का सत्य क्या है। सृष्टि चक्र को जान लिया, आत्मा परमात्मा को जान लिया, कोर्स की हर बात को जान लिया, परंतु सत्य क्या है, वो कौन सी अवस्थाओं का सत्य क्या है, वो वास्तविक अनुभव क्या है, जब तक उन चीजों को हमने नहीं जाना तब तक हम छूट नहीं सकते। एक पंछी, किसी राजा ने उसकी आवाज सुनी और आदेश दिया कि इस पंछी को लेकर पिंजरे में डाल दो। पंछी जो कि अब तक मुक्त था, बेचारा पिंजरे में फंस गया, रो रहा है, पर राजा को लग रहा है कि ये गाना गीत गा रहा है, ये संगीत है उसका, कैसे उसे समझे। एक दिन, रोज एक दिन नहीं, रोज वो पक्षी एक फकीर को सुनता है जहां से राजधानी से गुजरता हुआ, और वो फकीर कह रहा है गीत जिस गीत का अर्थ है कि केवल और केवल सत्य ही छुड़ा सकता है। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर नहीं आते, विदाउट ट्रुथ यू कैनॉट अटेंड फ्रीडम। रोज सुनता है और राजा भी सुनता है, सारा नगर भी सुनता है, पर कभी किसी ने उस गीत की तरफ ध्यान नहीं दिया। परंतु ये पक्षी जब वो गीत सुनता है तो उसके मन में जैसे संकल्प आता है कि यहां उत्तर है मेरी रिहाई का। और एक दिन जब राजा से मिलने कोई आता है तो दिखाया है कि राजा कहता है कि कह दो जाकर कि मैं नहीं हूं, क्योंकि राजा को मिलना नहीं है। तो पक्षी जोर से चिल्लाता है कि नहीं राजा, झूठ बोल रहा है, वो है यहीं पर। तो राजा जब ये सुनता है कि ये पक्षी, इसकी ये मजाल, और वो आदेश देता है इस पक्षी को निकाल दो यहां से। पक्षी छूट जाता है। कहने का भाव, सत्य जो है वही हमें छुड़ा सकता है। शायद हम कहीं ना कहीं असत्य में है, शायद कहीं ना कहीं हम झूठ में जी रहे, शायद हमें अब तक जीवन के बहुत सारे सत्यों का पता नहीं चला है, या फिर पता चलते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि ये झूठ ही हमारा सत्य है, परंतु हम झूठ में जी रहे हैं, वास्तविकता में नहीं। तो सबसे पहला तो प्राप्ति, दूसरा जिनसे छूटना है उनसे नुकसान क्या क्या हो रहा है उसका चिंतन, तीसरा सत्य, और एक चौथा है ट्रैफिक कंट्रोल, के बाद में उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओम शांति। सभी संकल्प से बैठेंगे कि नीचे जितनी भी डालियां हैं मैं आत्म पंछी, उन सभी डालियों को छोड़कर उस अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास जा रहा हूं, मिलन, मधुर मिलन मना रहा हूं।
I'm not afraid।
अगली विधि है वैराग। जब तक मन में वैराग ना हो, हम किसी भी बंधन को छोड़ नहीं सकते, किसी भी आधार को छोड़ नहीं सकते। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हो जाता कि ये बंधन ही हमारे दुख के कारण है, और जब तक हम इन्हें नहीं छोड़ते, वो परमात्मा प्रेम का अनुभव ही नहीं हो सकता, ना मिलन का अनुभव हो सकता है। एक झूठी आत्म प्रवंचना में हम जैसे जी रहे हैं, और ये आंतरिक साधना है वैराग की। प्रभु प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा ना लगे। आज कहा ना, ट्रेन को पटरी पर डाल दो सुबह सुबह, अमृत वेला ये आधार है। इतना परमात्मा प्रेम से, इतना परमात्मा प्रेम से स्वयं को अमृत वेला भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, किसी का भी प्रेम हमें आकर्षित ना करे। इतना परमात्मा प्रेम से स्वयं को भर देना अमृत वेला। प्रवृत्ति में रहते बाबा ने कहा, नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज, लकीर के अंदर याद की और श्रीमत की, तो अपने हृदय में वैराग को उत्पन्न करना है। पॉइंट्स निकालनी है स्वयं ही, कौन कौन सी बातें मैं सोचूं कि जिससे इन सभी के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाए। वैराग व्यक्ति को तब उत्पन्न होता है जब ये पता चलता है कि इससे धोखा मिलने वाले, नुकसान होने वाला है, हार्म। तब तक वो व्यक्तियों को पकड़ के रखता है जब तक कि लगता है उनसे फायदा है। जब ये रियलाइजेशन होता है कि इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तब उनसे वैराग उत्पन्न होता है। जैसे हमारी कोई तारीफ करता है तो आसक्ति होती है, जिस दिन वो हमारी निंदा करना चालू करता है, स्वतः ही हम उससे दूर होना लगते हैं। क्यों? जिससे नुकसान होता है उससे व्यक्ति स्वतः ही दूर जाता है, स्वतः ही वो एक अप्रगट सा वैराग उत्पन्न होता है। ये संसार हमारे काम की नहीं, यहां की कोई भी चीज हमारी आध्यात्मिक उन्नति में वो सहयोग नहीं दे सकती जो कि हम निराधार रहकर और परमात्मा प्रेम से हम पा सकते हैं। इसके लिए अपने मन में वैराग उत्पन्न करना, ये एक विधि है जिससे कि इन डालियों को हम छोड़ सकते हैं। और एक समय कौन सा है, कौन सा समय अब चल रहा है? बाबा ने कहा यह समर्थ समय है, समर्थ बाप है, समर्थ बच्चे। तो समय की पहचान हर दिन स्वयं को देते रहना। विस्तार तो बहुत सारा हो सकता है, परंतु स्वयं ही जिन जिन डालियों को हमने पकड़ा है उसकी लिस्ट बनाना, और किस विधि से उसे छूटा जाए उसका उत्तर स्वयं ही निकालना, मुरलियों से, चिंतन से, बाबा की प्रेरणा से। तो इस मुरली को हम आज यहीं पूरा करते हैं। ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, ऐसे उड़ता पंछी, ऐसे स्वतंत्र पंछी, सभी डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहो तह जहां उड़ने वाले, ऐसे विश्व परिक्रमा करने वाली आत्माओं को, अर्थात बेहद की सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रीमत की उंगली पर नाचने वाली आत्माओं को, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करने वाली श्रीमत अनुसार आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।